ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशाली गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ट्रेन से आ रहा था तो मैं इस अध्याय को पढ़ता हुआ आ रहा था तो मुझे बहुत झकझोरने वाली बातें प्रभुपाद जी की दया से थोड़ी समझ में आई। आप सब लोग भी इन तथ्यों को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ये पूरा अध्याय बड़ा अद्भुत है और इसका तात्पर्य और विशेष अद्भुत है। साथ में स्कंद का पांचवा अध्याय शीर्षक है हिरण्यकश्यपु का साधु सदृश पुत्र भक्त प्रह्लाद महाराज। कैसे साधु प्रह्लाद महाराज है तो घटना तो आज के दिन की प्रायः सभी जानते हैं और सब जानते हैं कि आज के दिन ही भगवान ने खंभे को फाड़ करके भक्त प्रह्लाद के लिए भगवान प्रकट हुए और उस समय से नरसिंह भगवान का रूप सारे संसार के लिए प्रकट हुआ। कौन है वो नरसिंह? मूलतः श्री कृष्ण ही है। जयदेव गोस्वामी ने कहा केशव धृता नर हरि रूपा, जो भगवान श्री कृष्ण हैं जो केशव हैं उन्होंने ही नर हरि का रूप धारण किया है। तो ये एक विशेष अवतार भक्तों के लिए, छोटे से भक्तों के लिए, 5 साल के बालक के लिए भी भगवान अवतरित होते हैं और सारे संसार को एक विशेष आराधना का एक मौका मिला। इन माताओं को बोलो आवाज ना करें, हाथों से काम करें, जवान से नहीं। इधर से बोलो, इधर से ना करें। इसमें भगवान नरसिंह की हम भक्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए एक पद्धति के रूप में प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश भी किया हम सभी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जानते हैं, ऐसी घटना घटी, लेकिन उस घटना को लेकर के भी हमारा इतना दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए नहीं घटती ना, और हम सोचते हैं हम तो इतने छोटे भक्त हैं नहीं, 5 साल के प्रहलाद महाराज थे, हम तो 20, 22, 25, 30, 40, 50, 60, 70 साल हो गए, उनको तो थोड़ी सी भक्ति किया होगा उन्होंने, 5 साल में कुल मिला के बचपन से भी किया होगा तो कितनी की होगी 5 साल, हम लोगों को तो सालों साल हो गए। इसलिए अभी तक एक बार भी भगवान खंभे में से भाड़ गए तो बाद में आएंगे, मूर्ति में से भी नहीं आ रहे हैं। जिस खंभे में से जो कि खंभा था, जो बिल्डिंग को सपोर्ट के रूप में देखा जाता था, जिसके सामने कोई आरती नहीं करता था, ऐसा भी नहीं कि लंबे समय तक जिस खंभे को लोगों ने फूल चढ़ाए हों, भोग लगाया हो, घंटियां हिलाई हों, और उस कारण से उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा मंत्र आदि के साथ की गई हो उस खंभे में, और अचानक से फिर प्रहलाद महाराज का भूलना हुआ और खंभे में तो पहले से थे ही भगवान और फिर फाड़ के निकल आए। हम सोचते हैं ये घटना इतिहास है, ऐसा सुंदर रूप भी है, अद्भुत है भगवान का, हमारे लिए तो भगवान मूर्ति से भी नहीं निकलते, वो इतने लंबे समय से आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा लगता है कि मूर्ति में भी है या नहीं है। वो स्थिति का आभास करना कि यतो यतो यामी ततो नरसिंह गा तो हम बहुत सहजता से लेते, कई बार झगड़ा भी करते, मेरे को नरसिंह आरती गाने को ही नहीं देते, बोले नरसिंह आरती दे दी जाए तो बोले मेरी ट्यून देखा नहीं अभी इन्होंने लगता है, मेरी आवाज देखी नहीं, हाँ मुझे ये वाली ट्यून भी आती है, वो वाली ट्यून भी आती है, प्राय नरसिंह आरती सबसे पहले याद होती है, इसलिए इतनी कुलकुलाहट होती है कि कब मेरी नरसिंह आरती सब सुनेंगे कोई सुन मौका नहीं दे पाता कई बार। तो ऐसा लगता है कि ये घटना वास्तव में भी घटी थी या नहीं घटी थी, और हमारी बुद्धि भी कुछ ऐसी बनी हुई है कि उसको सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप अगर समझा करके लेके जाया जाने कि शास्त्र कितने प्रामाणिक हैं, शास्त्रों की घटनाएं आंखों से जो हमें दिखाई देता है संसार उसको भी शास्त्र की आंखों से देखा जा सकता है, तो कितना प्रूवेबल शास्त्र है कि जो शास्त्र कह रहा है बिल्कुल सत्य है, फिर भी ऐसी घटनाएं हृदय में बैठती नहीं। तो उसके पीछे क्या कारण है कि हमारे लिए भगवान क्यों नहीं प्रकट ऐसे होते, और प्रहलाद महाराज के अंदर ऐसा क्या था कि उनके लिए भगवान खंभे से भी फाड़ करके प्रकट हो गए। उस बात को भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय में समझाया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया। आप सबसे निवेदन है इस श्लोक का आप लोग कभी भूलना नहीं, क्योंकि इस श्लोक में हम नरसिंह भगवान को कम प्रहलाद महाराज को ज्यादा समझने की चेष्टा करेंगे, और नरसिंह भगवान समझ में भी तभी आएंगे क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृक्ष की जड़ की तरह हैं सारे संसार के लिए। यदि संसार वृक्ष है तो कृष्ण क्या है, उस वृक्ष की जड़ है, सब कुछ उन्हीं पर आधारित है। हम लोग ये सीखते भी हैं कि अगर सबकी सेवा करनी है तो सबकी सेवा संभव नहीं है, तो किसकी सेवा कर लो, अगर वृक्ष की पत्तियों की टहनियों को पोषण पहुंचाना है तो किसकी सेवा कर लो, जड़ में पानी डाल दो, प्रभुपाद जी उदाहरण सबको अंश के रूप में भी बताते हैं गीता से कि भगवान कह रहे हैं ये सब जीव जो हैं वो क्या हैं, मेरे अंश हैं। तो जैसे पेट सबका आधार है और सभी अंशों को पेट क्या पहुंचाता है, ऊर्जा पहुंचाता है। तो जैसे पेड़ के लिए जड़, ऐसे ही शरीर के लिए पेट। जैसे जड़ में पानी डालने से सबका पानी की पूर्ति हो जाती है, ऐसे ही पेट में भोजन डालने से सबके भोजन की आपूर्ति हो जाती है। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ फिर सबसे अधिक, पेट या जड़? ये दो उदाहरणों से प्रभुपाद जी समझाते हैं। अब इसमें और महत्वपूर्ण भी आचार्य समझाते हैं कि हमें जड़ में पानी डालना है तो जड़ में पानी पहुंचेगा कहां से? जड़ तक पानी पहुंचाएंगे कैसे, क्या माध्यम है? हाँ, पेड़ की जड़ तक पानी पहुंचाना है तो क्या माध्यम, क्या कैसे पहुंचेगा पानी वहां तक? पाइप से? हाँ, नली? अरे पेड़ की बात हो रही है, नली की, ये वाली नली नहीं, पेड़ नहीं। पेड़ की जड़ में पानी पहुंचाना है तो क्या माध्यम है? हाँ, कहाँ डालते हैं जड़ में? जमीन पे डालते हैं, जड़ में नहीं। जड़ खोद के थोड़ी डालते हैं, कहाँ डालते हैं? जमीन पर डालते हैं और जमीन के माध्यम से पानी जड़ तक पहुंच जाता है। तो जड़ तक पानी पहुंचाने का माध्यम क्या है? भूमि। ऐसे ही पेट अगर सबका स्रोत है तो पेट तक अगर भोजन पहुंचाना है तो उसका माध्यम क्या है? मुंह। मुंह में जो डाल देते हैं वो अंदर ले लेती है क्या जीव? बच्चों को देखो डाल करके, कुछ एक चीजों को ही लेती है जीव। अगर जीव ने रिजेक्ट कर दिया तो पेट में जाता है? नहीं जा पाता, बहुत कठिन होता है। इसलिए पेट तक भोजन पहुंचाने का माध्यम क्या है? जीवा। इसलिए जड़ तक माध्यम क्या है? भूमि। और पेट तक का माध्यम क्या है? जीवा। तो जैसे भूमि ऐसे ही जीवा। तो पेट और जड़ से भी महत्वपूर्ण क्या हो गया फिर? भूमि और जीवा। हमारे आचार्यों ने उदर के बारे में बताया लेकिन इतना ज्यादा नहीं बताया जितना बोले ये जीव खतरनाक है। तार मध्ये जीवा अति लोभमय सुदूरमति। पेट का वेग इतना समस्या नहीं देता जितना कि जीव की डिमांड समस्या देती है। इसलिए पेट को तो आप घास भी भर दो तो भी भर जाएगा वो, और सारे शरीर में ताकत भी दे देगा उसी घास से। लेकिन ये घास वहां तक पहुंचेगी कैसे? उस घास को ऐसा बनाना पड़ता है कि जीव ले ले उसको, बस उसके लिए फिर उसमें जीरे का, मेथी का, कड़ी पत्ते का, हींग का, धनिये का, सिंगदाने भी डाले जाते हैं उसमें। फिर घास को भी अगर फ्राई कर दिया जाए ना बढ़िया तरह से, हमारे बंगाली माताजी है वो, हमारे भक्त लोग काट पीट करके जो फेंक देते उसमें से वो निकाल निकोल करके वो सब्जी बना देती और बड़ी स्वादिष्ट बनती है, और उसको खाने से पेट भर जाता है। वैसे सीधा खिलाओ तो शरीर खाने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्या है इस पेट को भरने के लिए? जीव। तो अगर भगवान की सेवा करनी है तो भगवान तक सींचने के लिए, भगवान अगर जड़ हैं, भगवान अगर पेट हैं, तो फिर भक्त किसकी तरह होंगे? जीव की तरह अथवा भूमि की तरह, जड़ की तरह नहीं, किसकी तरह? तो महत्वपूर्ण क्या होगा फिर हमारे जीवन में? अगर भगवान का पेट भरना है तो भक्त को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो भगवान की महिमा बड़ी नहीं है,
महिमा किसकी बड़ी है?
भक्तों की महिमा बड़ी है। इसलिए नरसिंह भगवान के प्राकट्य आदि की लीला बाद में लिखी और पहले प्रहलाद महाराज के साधु गुणों का वर्णन किया है। तो हम थोड़ा प्रहलाद महाराज को लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे कि प्रहलाद महाराज के अंदर ऐसी विशेषता क्या थी। तो हुआ क्या, घटना कुछ इस प्रकार से आरंभ होती है कि महाराज युधिष्ठिर नारद जी को प्रश्न करते हैं। ये नारद जी महाराज युधिष्ठिर को प्रहलाद महाराज की चर्चा सुना रहे थे और किस प्रकार से नारद जी ने जब बताया कि ऐसा साधु पुत्र था वो हिरण्यकश्यपु के कई पुत्रों में से, कि हिरण्यकश्यपु उसको ही बहुत प्यार करता था, बहुत मतलब इतना प्यार करता था कि गोद में लेने के साथ ही उसके आंसू टपकने लगते थे और प्रहलाद महाराज का सर हिरण्यकश्यपु के आंसुओं से गीला हो जाता था, ऐसा प्यार करता था। दरबार में भी गोद में उठा करके उनके सर को सूंघता था, हृदय से लगाता था, इतना प्यार करता था। प्रहलाद महाराज आज्ञाकारी थे, विनम्र थे, बड़े सम्मान के साथ पूरी तरह से दंडवत प्रणाम करते थे और बहुत नपे तुले शब्दों के साथ बातचीत करते थे। मतलब 5 साल के बच्चे के अंदर ऐसी गंभीरता, ऐसी विशेषता कि कोई भी व्यक्ति साधारण तक खिंच जाए। इसलिए हिरण्यकश्यपु भी प्रहलाद के प्रति बहुत खिंचाव महसूस करता था। शुक्राचार्य जी हिरण्यकश्यपु के गुरु थे, इनका नाम ही था शुक्राचार्य। शुक्र से संतान उत्पन्न होती है। वैसे हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा नास्तिक था, रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, इतना बड़ा नास्तिक था कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था, भगवान में तो मानता ही नहीं था। हम भी जैसे भगवान में नहीं मानते कई बार, लेकिन इतने बड़े नास्तिक नहीं है कि हम खुद को ही भगवान घोषित करें ओपनली। अंदर से तो करते ही है, ओपनली मार्केट में ऐसा चैलेंज नहीं करते जैसा हिरण्यकश्यपु ने किया था। तो बोले इतना बड़ा नास्तिक और शुक्राचार्य ब्राह्मण है जाति से, तो बोले ब्राह्मण को तो ऐसे किसी व्यक्ति का गुरु या ऐसे व्यक्ति को पुरोहिताई नहीं करनी चाहिए। फिर भी उन्होंने उसका पुरोहिताई करना स्वीकार किया। बोले क्यों किया? बोले अपने शुक्र के लिए। शुक्र कौन थे? बोले संदर अमरक उनके बेटे थे। बेटों की बड़ी चिंता थी, मेरे बेटों का पालन पोषण कैसे होगा? बोले हिरण्यकश्यपु से धन दौलत मिलता रहेगा, इसलिए बोले इसका गुरु बन जाता हूँ। तो कोई व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिए, अपनी संतान के पालन पोषण के लिए ब्राह्मण होकर के भी अगर धन के पीछे भागता और इतना नीचे गिर जाता है कि एक नास्तिक व्यक्ति को भी अपना चेला बना लेता है एक प्रकार से, उसकी हाँ में हाँ मिलाता है उसको कल्टीवेट करने के बजाय, बोले वो ठीक नहीं है। प्रायः संसार में धनवान व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोई व्यक्ति ओपनली कहाँ कुछ समझा पाता है किसी को। नहीं समझा पाते। तो प्रभुपाद जी बहुत कठोरता के साथ कहते, बोले वो ऐसे ही इसलिए शुक्राचार्य है, वो सच्चे आचार्य नहीं है, वो शुक्राचार्य है, ब्राह्मण कुल में कलंक है एक प्रकार से। एक नास्तिक व्यक्ति का गुरु बन करके, जब गुरु थे तो उनका घर भी साथ में ही था, जब मकान साथ में था, राजमहल के आसपास, भाई गुरु हैं तो साथ में ही सम्मान देना पड़ता है, गुरुजनों के लिए भी कमरे की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उनका मकान भी पास में था, तो उनके दोनों पुत्र संड अमरक वो भी पास में ही रहते थे। जब वो भी पास में रहते थे तो जब बाप का गुरु उसका बाप है तो बेटा का गुरु उसका बेटा भी बन सकता है। तो उन्होंने सोचा पास में ही संड अमरक रहते हैं, ये लोग भी वेल ट्रेन्ड हैं शुक्राचार्य के द्वारा, पॉलिटिक्स आदि में, शासन आदि में, पक्षपात आदि में, पॉलिटिक्स मतलब जहाँ दो चीजें होंगी ही होंगी तभी पॉलिटिक्स संभव है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। बहुत अद्भुत, मतलब इतना विशेष है कि आप एक एक शब्द पढ़ोगे तो आप की खोपड़ी हिल जाएगी एकदम से, ओ ऐसा कैसे हो सकता है। पॉलिटिक्स मतलब जहाँ मित्र और शत्रु ये दोनों होंगे ही होंगे, एक ग्रुप को आपको मित्र बनाना ही होगा तभी पॉलिटिक्स संभव है। शत्रु को किसी न किसी को शत्रु मान करके चलोगे आप, ग्रुप को या एक देश को, किसी न किसी को शत्रु पक्ष मानोगे, किसी न किसी को मित्र पक्ष मानोगे, उसके अनुसार व्यवहार करोगे, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। बोलिए ये सब शिक्षा देते ही हैं पास में, तो संड अमरक शिक्षा देते थे। तो ये सारी वार्ता नारद जी हिरण्य दुर्योधन इसको सुना रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे। तो युधिष्ठिर महाराज को जब उन्होंने सुनाया उस समय की वार्ता सुना रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि इतना प्यार करते थे हिरण्यकश्यप उनको, तो फिर इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे हो गई? संसार में प्रायः जो आज्ञाकारी बालक नहीं होता माता पिता का, फिर भी माँ बाप उसको छोड़ नहीं पाते, उसकी जान लेना तो कितनी बड़ी बात है। संसार में भी ऐसा देखा जाता है, जो धूर्त संतानें होती हैं उनमें भी माँ बाप की आसक्ति घड़ी रहती है। तो जो आज्ञाकारी संतान जिससे वो इतना प्यार करता है कि उसकी आंखों में अश्रुपात होता है, क्योंकि पास में ही गुरुकुल से थोड़े समय पढ़ने के लिए भेज दिया, और जैसे ही वापस आए तो हिरण्यकश्यप ने बड़ा गोद में उनको उठा लिया, और गोद में उठा करके बड़ा लाड़ प्यार करने लगे, और उनको कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा। अच्छा मैथमेटिक्स में बता तेरे को क्या क्या आता है, सुना 1 2 3 नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा। हम लोग तो स्पेसिफिक पूछते हैं ना, जान बूझ करके उस तरह, ये आता है क्या, नहीं आता, चल नीचे वाले स्तर पर आ जाते, फिर चाहिए आता है क्या, ABCD सुना, चल फटाफट, नहीं आता, अच्छा चल आई सुना, वो भी नहीं आता, फिर सीखता क्या तू वहां जाकर के। हिरण्यकश्यप प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इतना प्यार करता है, उसने ये नहीं पूछा कि तेरे को ये आता है क्या, ये आता है कि ये आता है कि नहीं, पूछा पुत्र सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है। ये कैसा अद्भुत प्रश्न था, ये सब रहस्य प्रभुपाद जी ना समझाए तो हम मूर्खों को कैसे समझ में आ सकते हैं, कि उसके प्यार का देखो तो सही कितना परिणाम था, परिमाप था, कि वो इस तरह से पूछ रहा है कि तुम्हें तुम्हें जो आता है वो बताओ, कुछ भी बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा। तब प्रहलाद महाराज ने एकदम से इतना भारी श्लोक बोल दिया कि पिता महाराज, हे असुरों के सम्राट, सम्राट के साथ संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि जो घरवार है ना उसमें असत ग्रह रात दिन असत चीजें ही बताई जाती है, और असत चीजों से ऐसा आग्रह किया जाता है कि उसकी खोपड़ी में कभी जिज्ञासा के लिए जगह ही नहीं मिलती, उसको चारों तरफ से आसक्ति ऐसा बांध देती है, बिकॉज उनको गिरना ही गिरना है। बोले उसका कोई मरना ही मरना है उसने। ये ऐसे ही है जैसे एक बार एक चील एक सांप को पकड़ करके ले गई और जब वो नीचे उसको आकाश में ले जा करके अपने अड्डे पर उतार करके खाने के लिए लेके जा रही थी, जब नीचे ला रही थी तो सांप थोड़ा हवा के कारण उछल पाया ऊपर की ओर पूंछ से, तो पूंछ की ओर से उछला तो उसने थोड़ा सा झटके से उसको लपेट लिया और उसके पंख लपेट लिए। जब पंख लपेट लिए तो इतनी ऊंचाई से वो गिरी कि फूट गई, गिरती खोपड़ी फूट गया उसका। दैविच्छा वो सांप बच गया और चील मर गई। बोले आसक्ति संसार में जीवों को बोले ऐसे ही लपेट लेती है और फिर वो कभी नहीं निकल पाता। प्रहलाद महाराज कहते ये घर अंधा कुआ है, गहरा अंधा कुआ है, सूखा कुआ है, यहाँ मरना निश्चित है जो संसार में घरवार है। पिताश्री घर से बाहर जाना ही, वन में जाना ही, विशेष रूप से प्रभुपाद जी लिखते वृंदावन में जाना ही जीवन का उद्देश्य है, ये मैंने सीखा। के साथ प्रहलाद महाराज ने बताया। हिरण्यकश्यप भी साधारण नहीं था, बहुत सारी बातों को पहले से ही जानता था, शास्त्र की बातों को। हिरणाक्ष जब मरा था तो उसने अपनी भाभी को बहुत समझाया था कि ये तो सब हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, प्याहू की तरह थोड़े समय के लिए मिल जाते हैं, बाद में सब बिछुड़ जाते हैं। आत्मा तो अजर अमर है, यात्रा चलती रहती है, शरीर का नाश होता है। ये सब बातों को हिरण्यकश्यप भी शास्त्र की भाषा में जानता था। और जैसे शास्त्र की बातों को कोई छोटा सा बालक कह दे ना तो एकदम से कैसा स्ट्राइक करता है ना, कैसा अजीब लगता है। मैं उधमपुर में था, वहाँ छोटा सा ही बालक था, इससे भी छोटा होगा, ध्रुव से भी छोटा, तो उसको मैंने गोद में लिया। गर्ग नाम था उसका, इसी फैमिली से थे। तो मैंने कहा तू मेरे साथ चलेगा? बोले हाँ मैं आपके साथ चलूँगा। माता पिता बैठे हुए हैं, मेरे को कहता है प्रभु जी लेकिन पिताजी तो दुकान डाल रहे हैं। और मैंने इनको बोला आप दुकान क्यों डाल रहे हो? पिताजी चुप बैठे हो, अपनी ओर से वो बोल रहा है। मेरे को अंदर से बड़ा अजीब लग रहा है, मतलब कितनी बड़ी बातें कह रहा है। मैंने तो मना किया पिताजी, पहाड़ी भाषा में थोड़ा बोल रहा था, वो अलग ही टोन थी उसकी। आप भी मना कर दो ना इनको, फिर तू रह लेगा? बोले मैं रह तो लूंगा लेकिन एक दिक्कत आएगी। मैं बोला क्या दिक्कत आएगी? बोले अगर मैं चलूंगा आपके साथ तो मेरी मम्मी को मेरी याद आएगी। ये नहीं कह रहा कि मेरे को मेरी मम्मी की याद आएगी, आप लोग समझे नहीं उसके रास्ते को, कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। छोटा सा बालक मेरी मम्मी को मेरी याद आएगी, यही कहते नहीं रुको मैं बात तो ठीक कह रहा है तू। फिर प्रभु जी मम्मी अगर साथ में चल पड़ेगी तो फिर पापा को मम्मी की याद आएगी। मैं बोलो फिर बेटा समाधान क्या है? बोले प्रभु जी एक समाधान है कि हम तीनों ही चलते हैं आपके साथ। अद्भुत उत्तर थे उसके। तो मैंने माता पिता को बोला, माता पिता बोले हाँ प्रभु जी ये हमें रोज ऐसे ही बातें करता है और हम हैरान होते हैं इसकी बातों को सुन सुन करके। कौन ऐसा करता है? कोई कोई ऐसे संस्कार के साथ ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके माता पिता भी कह रहे थे प्रभु जी हमें आना ही है, अब किसी भी हालत में आप हमें निकालो, हमें ले चलो, हम वही सेवा करेंगे। अच्छी बात है। वैसे मोटी बुद्धि से देखा जाए तो कुछ सुनिश्चित हो या ना हो लेकिन इस संसार से जाना सब छोड़ के जरूर सुनिश्चित है। तो एक दिन तो सबने जाना ही जाना है, सब छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन ये बात न जवानी में समझ में आती है, न बुढ़ापे में समझ में आती है, क्योंकि आसक्ति में ऐसा अंधा हो जाता है ना, मौत सामने खड़ी हो जाती है तो भी नहीं समझ में आती। और कभी कभी छोटा सा बालक ऐसी बात कर दे, तो मैं रिलेट कर रहा था, विचार कर रहा था कि जब प्रहलाद महाराज ने ऐसा बोला होगा कि पिताजी वन में चले जाओ, ये घर तो अंधा कुआ है, तो हिरण्यकश्यप जिसने सारे संसार को जीत लिया, वो एक दुकान थोड़ी खोलने जाता, उसका तो सारा संसार है, उसको कितनी हंसी आई होगी। और साथ में थोड़ी सी बात पिंच भी की उसको। रूपा जी के तात्पर्य इस अध्याय में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इतना लंबा बोलने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, एक एक श्लोक में बहुत अद्भुत तात्पर्य है, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। तो हिरण्यकश्यप कहता है, संदामरक पास में ही थे, उनको बुला करके ला करके कहता है, देखो तुम लोगों को पता नहीं है, ये वैष्णव लोग बहुत चीटर हैं, एक नंबर के, ये लोग वेश बदल बदल करके प्रचार करते हैं, इसलिए पता करो इसकी बुद्धि किसने ऐसी बनाई है। बोले वृंदावन जाने की बात कर रहा है, विष्णु का आश्रय लेने की बात कर रहा है, हरि आश्रय, तो बोले वहां जाके हरि का आश्रय लेना चाहिए आपको। वृंदावन में जाने का मतलब ये नहीं कि वहां जाकर के गोलगप्पे खाने चाहिए आपको या वहां लस्सी पीनी चाहिए, बोले नहीं, वहां जाकर के हरि का आश्रय लेना चाहिए, ऐसा प्रहलाद महाराज इस श्लोक में बोल रहे हैं। तो बोले वृंदावन ही ऐसी जगह जहाँ बिना लहसुन प्याज के समोसा टिक्की सब मिलते हैं, बोले आनंद लेते हैं इसके, नहीं हरि आश्रय, तो वहां जाके हरि का आश्रय ले लो पिताजी। तो बोले हंसने लगा हो और बोला कि संडामरक को बुलाया, पता करो। संडामरक ने बड़ा पता किया, तो पता किया तो प्रहलाद महाराज को पता करते समय पूछ रहे हैं कि देखो प्रहलाद, हम तुम्हारे गुरु हैं यहाँ और तुम तो कुल नंदन हो, कुल के भूषण हो, और तुम्हारी दिमाग में देखो ना, पूरे गुरुकुल में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं जिसका ऐसा दिमाग खराब हुआ हो, तुम्हारी ऐसी मति भिन्न कैसे हो गई। बोले मृषा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, कितना अच्छा है तुम, सबसे योग्य है, क्वालिफाइड, खूब चढ़ा रहे हैं प्रहलाद महाराज को, कि जिससे एकदम से पहली बार में ही छोटा सा बालक है ना, प्यार से पूछो तो एकदम से फटाक से बता दे। और सुंदर सुंदर श्लोक हैं, बहुत मजा आ रहा था मेरे को, मैं रात को 1-1.30 बजे तक पढ़ता रहा ट्रेन में, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब उन श्लोकों को नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये श्लोक बहुत विशेष है। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, यहाँ कोई आया गया नहीं, ना ही किसी ने मेरी मति को खराब किया है, और ना ही ऐसा है कि मैं आपकी बात को मानना नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में मेरी बहुत बड़ी विवशता है। बोली मेरी स्थिति क्या है मैं बताऊँ तुमको, यथा ब्राह्म्यतयो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणो, हे अध्यापको, असुर नहीं बोल रहे उनको, असुरों को गुरु नहीं बोल रहे, गुरुजन बोल रहे बड़े सम्मान के साथ, गुरु सही बताऊं, स्वयं आकर्षक सम्मित हो, मेरा जो मति है ना ये नेचुरली आकर्षित है, अपने आप ही कृष्ण की ओर मेरी मति भागी, मैं लगाता नहीं, ऐसा लगता है कि खींच लिया किसी ने। बोले कैसा ऐसा होता है, बोले जैसे आय, आय माने लोहा, ब्रह्मत्य माने घूमता है, लोहा कब घूमता है, किसकी ओर आकर्षित होता है, बोले जैसे चुंबक की ओर लोहा आकर्षित होता है। बोले मेरी मति भी भगवान कृष्ण की ओर जो चक्र पानी है और उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, यद्रच्छया, मेरा मति मेरी बुद्धि एकदम से ऐसी आकर्षित है, ये भक्त है ना इसको साधु कहते हैं, हम तो धोती कुर्ता तिलक झापे लगा करके कोई हमें प्रणाम ना करे, ओ वैष्णव अपराध कर दिया इसने, तो मेरे को प्रणाम ही नहीं किया, मेरे को प्रसाद नहीं दिया, मेरे को पूछा। अरे वैष्णव कैसा होता है वो सीखो ना। वैष्णव तो ऐसा होता है जिसकी बुद्धि वो नहीं भी लगाना चाहे, बोले मैं आपकी क्लास सुनता हूं, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुनता, लेकिन क्या करूं, इधर से सुनता हूं और इधर से निकल जाती है। मेरी मति पहले से ही ऐसी बनी हुई है, हम सब की ऐसी स्थिति है। हम सब लोग दो चीजें होती हैं, एक होता है सुनना, एक होता है श्रवण करना। क्या? सुनना और श्रवण करना। अब जैसे हम बोल रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, इसकी भी थोड़ी आवाज आ रही है, लेकिन पंखे की आवाज इधर से सुन रहे हैं और इधर से निकल रही है, हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आशा करता हूं ये वाली आवाज को आप कुछ ग्रहण कर रहे होंगे, सुन तो उसको भी रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इससे जो श्रवण कर रहे हैं, ये क्या है, श्रवण जो हम ग्रहण कर रहे हैं, और ये क्या है, सुनना, सुनाई तो दे रही है ये ध्वनि भी। तो प्रहलाद महाराज के साथ क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि तुम लोग जो मेरे को पॉलिटिक्स की जो शिक्षा दे रहे हो ना, ये मित्र है, ये दुश्मन है, उसके साथ ऐसा करना है, पैसा ऐसे कमाना है, वो मैं सुन रहा हूं, वो मैं क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं। हमारे साथ क्या होता पता है, ये सब पॉलिटिक्स की बातें हम पहले ही श्रवण कर चुके हैं, सुनते हैं कथा, ऐसे ही बैठ के प्रहलाद महाराज सुनते थे। और मति किधर खिंची हुई है, उन्होंने पहले ही भगवत भक्ति का ऐसा श्रवण किया है कि वो बोले मेरी मति चक्रपाणी भगवान की दया के कारण क्या हो गई है, आकर्षित हो गई है, खिंची हुई है मेरी मति, मैं नहीं लगाना चाहता, ऐसा लग रहा है कि मेरे को कठपुतली की तरह, जैसे कठपुतली नाचती है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कठपुतली की तरह, यहां वर्णन कर रहे हैं बोले लोहा चुंबक की तरह जैसे खिंच जाता है, मैं ऐसे खिंच रहा हूं, तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई और आकर के मेरे को कन्विंस कर रहा है, मेरे को भटका रहा है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो खींचा जा रहा हूं। वास्तविकता में देखा जाए, आचार्य वर्णन कर रहे हैं ये इतने बड़े भक्त थे कि भगवान की ओर, यहां तो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि मेरा मति खींचा जा रहा है, वास्तव में इन्होंने भगवान को वैकुंठ धाम से खींच लिया। अब चुंबक की ओर लोहा खिंचता है, होता है ना, क्या लोहे की ओर चुंबक नहीं खिंचती, अगर लोहा बड़ा होगा तो चुंबक खिंच जाएगी और चुंबक बड़ी होगी लोहे को खींच लेगी। भगवान खुद कहते हैं अहम भक्त पराधीन हो, अर्थात भगवान मैं भक्तों के सामने कैसा हूं, छोटा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं। और भगवान ने यह दिखाया कि प्रहलाद इतना बड़ा लोहा है कि मैं चुंबक क्या क्या किया, मैंने अपना वैकुंठ छोड़ करके खंभे में आकर के खंभा तोड़ के बाहर आना पड़ा, खिंचा चलाया। कैसे भक्त हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ये नहीं कह रहे, क्योंकि भगवान भक्तों को श्रेय देते हैं और भक्त भगवान को श्रेय देते हैं, वो कह रहे हैं ये सब के पीछे इच्छा चक्र पाणी यद्रच्छया, जो सुदर्शन चक्र धारण करने वाले जो चक्र पाणी भगवान विष्णु हैं, बोले उनकी इच्छा से मैं खिंच रहा हूं, अर्थात मैं क्या हूं, उनकी इच्छा का कठपुतली। प्रभुपाद जी एक भजन में ऐसा वर्णन करते हैं अपने बारे में, बोले हे कृष्ण, मैं आपके हाथों का कठपुतल, मैं नहीं जानता आप मेरे को यहां क्यों लेकर के आए। अब आपको जैसे नचाना है वैसे मेरे को नचाओ। ये भक्त होते हैं, कैसी वैचित्री है। तो प्रहलाद महाराज को ये कह रहे हैं, तुम्हारी दुर्बुद्धि ऐसे कैसे हो गई है, भिन्नमति ऐसे कैसे हो गई, तुम कुल के अंगार कहां से पैदा हो गए, अर्थात कुल को जलाने वाली बुद्धि तुम्हारे अंदर कैसे हो गई। प्रहलाद महाराज क्या कहते पता है, अरे गुरुजनों, आपका ऐसा सोचना ठीक नहीं है। अरे जीव मात्र का स्वभाव है कि वो कृष्ण का अंश है, और कृष्ण का नाम ही कृष्ण इसलिए पड़ा है कि वो सभी को आकर्षित करते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से भगवान की ओर आकर्षित होना, ये तो जीव की नेचुरल कंडीशन है। लेकिन मेरे पिता और बाकी लोग जो कृष्ण की ओर अनाकृष्ट हो रहे हैं, अर्थात आकृष्ट नहीं हो पा रहे हैं, जबकि वृंदावन में तो कृष्ण की ओर पशु पक्षी भी आकृष्ट होते हैं। वृंदावन का तो ऐसा व्यापार है, आप देखो हम लोग गोवर्धन में बैठे हैं, उसी वृंदावन धाम में हमें बैठने का मौका मिला है, लेकिन हम अपने अंदर थर्मामीटर डाल के देखें, इस धाम में जिसमें वृक्ष भी, फूल पौधे, पशु पक्षी सब आकर्षित होते हैं कृष्ण की ओर, हम इस धाम में भी धन और स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं। जिस ओर कौन आकर्षित है, हिरण्यकश्यपु, प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। हमारा आकर्षण कहाँ है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं प्रहलाद महाराज के इस भाव को। बोले वास्तव में समस्या मेरे में नहीं है कि मेरी भिन्नमति कैसे है, समस्या मेरे पिताजी के अंदर है कि वो आकर्षित क्यों नहीं है। बोले जीव भगवान का अंश है, अर्थात लोहा है, कृष्ण चुंबक की तरह है, इसलिए नेचुरली आकर्षण सब जीव मात्र का कृष्ण की ओर होना चाहिए, जैसे वृंदावन धाम में सबका होता ही है। इवन पेड़ पर टंगे हुए फल भी कृष्ण की ओर ऐसे आकर्षित हैं कि अपने आप टूट टूट करके उनके गोद में गिर जाते हैं, पुष्प भी कृष्ण को आकर्षित होकर के गिर जाते हैं। बोले लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप लोग क्यों आकर्षित नहीं, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोले इसमें आप लोगों को प्योरीफाई करने की जरूरत है। अब हम सब अपने अंदर झांक करके देखें कि गिरिराज जी में वास करने के बाद, जिसमें कि प्रहलाद महाराज ने तो अपने पिता को बोला था ये समस्या का समाधान तुम्हारा यहां नहीं होगा, तुम वृंदावन चले जाओ, घर अंधकूप में पड़े हुए हो, वहां समाधान हो सकता है। और हम तो पहुंचे हुए ऑलरेडी वृंदावन में, गोवर्धन में पहुंचे हुए, वृंदावन से भी श्रेष्ठ, और वहां भी हमारे अंदर बैठ करके हिरण्यकश्यपु की तरह दो ही आकर्षण हर सेकंड सताते हैं, स्त्री का आकर्षण पुरुष के लिए और स्त्री के लिए पुरुष का आकर्षण, हर सेकंड सताते हैं धन का आकर्षण। हमारी स्थिति क्या है, और हम सोचे हम इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान मूर्ति में से क्यों नहीं निकल कर के आ रहे, हम भक्त हैं, हम तो हिरण्यकश्यपु को भी पीछे छोड़ दिए, है कोई माई का लाल जो धाम में भी हमें आकर्षित करके दिखा दे भगवान से। बोले हम धाम में आ गए, वृंदावन में आ गए, बोले देखो हमारा कितना कूट कूट करके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य विशेष रूप से अहंकार भरा पड़ा है, कोई हिला के दिखाए बोले हमारी चट्टान को। कितना बड़ा भ्रम है हृदय में कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, भक्त समझते हैं। ऐसा लगता है कि आग में प्रवेश कर जाना चाहिए कोई अपने आप को, अगर ऐसा थोड़ा भी समझे, होलिका की आग की उसका एक जरा सा भी रोम भी ना बचे जलने से, कि क्या भक्त समझने के अधिकारी हैं, कोई भी दूर दूर तक अधिकार नहीं। और कोई अगर हमें प्रभु ना कहे, इसी तात्पर्य में प्रभु की परिभाषा भी प्रभुपाद जी बताते इसी चैप्टर में, आप लोग पढ़ना, बहुत अद्भुत ये चैप्टर मेरे को लगा। पहले भी पढ़ा था लेकिन दिमाग ऐसा ही है ना, दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कृपा करके हमें मौका दे रहे हैं। बोले जीव का आकर्षण कृष्ण की ओर जैसा लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, ऐसा ही आप जीव भी आकर्षित है। वैसे नेचुरली इधर होना चाहिए था लेकिन इधर नहीं हो रहा है। बोले क्यों नहीं हो रहा है, बोले जॉन्डिस के रोगी की तरह उसकी स्थिति बन गई है। जैसे जॉन्डिस के रोगी को गन्ने का जूस मीठा नहीं लगता, जबकि गन्ने का जूस क्या है, सभी मिठास का स्रोत है। जितनी भी दुनिया में चीजें बनाई जाती हैं उन सब में चीनी मिला करके उपयोगी बनाया जाता है, लेकिन वो चीनी भी कहां से बनती है, गन्ने के जूस से बनती है। उदाहरण में तुलना कर रहे हैं तो बोले फिर भी कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसका गन्ने के जूस के प्रति कैसा आकर्षण होता है, गिलास रख दिया जाए तो मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारे सामने अगर बीड बैग रख दिया जाए जो नाम रस है, जिसकी तुलना रूप गोस्वामी गन्ने के जूस के साथ करते हैं स्वस्थ व्यक्ति के साथ, तो सामने अगर बीड बैग हो, आत्मदृष्टि से बीड बैग में नाम बड़ा श्रेष्ठ है और बीड बैग मतलब नाम का गिलास, सामने बीड बैग रखा है और इधर गन्ने का जूस रखा है, किसको देख करके पानी आएगा, बीड़बैग को देख करके पानी आता, ओ ये कहाँ से जहर ला करके रख दिया बीड़बैग के सामने, बीड़बैग तुरंत उठा करके एकदम उसका रस पान आदमी करने लग जाए। हम आध्यात्मिक रूप से ऐसे स्वस्थ हैं, ऐसी फीलिंग है, जैसे जॉइंटिस से स्वस्थ व्यक्ति को कैसी फीलिंग आती है गन्ने के जूस को लेकर के, मुंह में पानी आ जाता है तुरंत। तो प्रहलाद महाराज कह रहे मेरा तो ऐसा नेचुरल आकर्षण है, लेकिन तुम लोगों का आकर्षण भौतिक वस्तुओं के प्रति ऐसा ही नेचुरल हो गया है। हम सब देखें कौन सी भौतिक वस्तुएं, भोग है और ऐश्वर्य, प्रसक्ता नाम तया अपर्त चेतसाम व्यवसायात्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते, संभव ही नहीं है कभी। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, मीरा बाई की ऐसी लगन लगी हुई है। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, महाप्रभु को लेकर के वो ऐसा वर्णन कर रही है कि अब तो ऐसा हो गया कि महाप्रभु की लेकर वर्णन कर रही है। बोले महाप्रभु कैसे हैं, बोलिए वही श्री कृष्ण जिनके हरि नाम में लो लग गई। तो वो कृष्ण जिनके प्रति सब आकर्षित हैं, वो कृष्ण हरि नाम के प्रति आकर्षित है। चैतन्य अवतार में हरि नाम उनको इतना मीठा लगा कि उन्होंने नाम के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं, और हमें वो नाम सबसे बड़ा जहर लगता है। तुम कितने बड़े हिरण्यकश्यप हैं, पुरुष स्त्री का आकर्षण कितना मीठा लगता है, कैसे छुप छुप करके मोबाइल में देखने की चेष्टा करते हैं। तो भैया भगवान कहां से प्रकट होंगे, फिर मूर्ति में से प्रकट होंगे, वो मूर्ति भी जो धाम में, वो मूर्ति भी जिसने ऑलरेडी दर्शन दे चुकी है कई सारे भक्तों को, तो भी हमारे लिए प्रकट नहीं हो रहे हैं। कैसे प्रकट होंगे, संभव नहीं। ये स्थिति क्यों होती है? बोले लोहा चुंबक की ओर नेचुरली आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोहे के ऊपर जंग लग गया है। क्या हो गया है? जंग लग गया है। जब जंग लग जाती है तो फिर वो आकर्षित नहीं होगा, उतना तेजी से आकर्षित नहीं होगा। इसलिए आकर्षित करना है तो बोले क्या करना पड़ेगा? उस जंग को साफ करना पड़ेगा। और जंग में सबसे भयानक लेयर है अहंकार का। जंग में जो लेयर है वो सबसे भयानक किसका है? अहंकार का। बोले पिताश्री को इतना बड़ा अहंकार है, बोले उनका नेचुरल संसार में आकर्षण है, इसलिए बोले नेचुरली भगवान की ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। समस्या किधर है? समस्या बोले मुझ में नहीं है, समस्या आप लोगों में है। तो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, हिरण्यकश्यपु इस भौतिक जगत में होने के कारण स्त्रियों तथा धन के द्वारा आकृष्ट था, जबकि भक्त प्रहलाद महाराज अपनी स्वाभाविक स्थिति में होने के कारण भगवान श्री कृष्ण द्वारा आकृष्ट थे। हमारी तो परंपरा ही ऐसी आकृष्ट से होती हुई चली आ रही है। हम ही आकृष्ट नहीं है धन और दौलत में और विषय भोगों में, माँ बाप भाई बंधु परिवार के सब के सब ऐसे आकृष्ट है। बोले भक्त प्रहलाद ने कहा, उनका यह दृष्टिकोण इसलिए भिन्न लगता है क्योंकि हिरण्यकश्यपु अप्राकृत रूप से भगवान श्री कृष्ण से अनाकृष्ट है, अतएव उसे शुद्धिकरण की आवश्यकता। बोले मेरे को रेक्टिफाई करने की चेष्टा मत करो। अब देखो हम आकृष्ट हैं तो हम भी तो विवश हैं। जैसे कठपुतली से फीलिंग भक्तों को हो रही है, ऐसी कठपुतली की फीलिंग अभक्तों को भी होती है। लेकिन अभक्त किसके हाथों की कठपुतली है? माया की। आप लोगों ने अगर गीता पढ़ा हो तो गीता में प्रभुपाद जी ने बड़ी दया करके एक ये फोटो दिया है, आप कभी देखना इसको। इसमें तीन स्त्रियां एक जीव को कठपुतली बना करके ऐसे उंगलियों से नचा रही। बोले हम सब की स्थिति भी कैसी है? ये मत सोचो कि अरे बेचारे प्रहलाद महाराज तो कठपुतली बन गए, क्या फायदा जी। हम भी बाई डिफॉल्ट क्या है? कठपुतली है। और कठपुतली जब नाचती है तो कितनी अच्छी लगती है दूर से, लेकिन जो कठपुतली नाच रही होती है उसको कैसा फील होता है? इसलिए संसार में जो दूसरे लोग हैं ना, जो भगवान की माया शक्ति से नाच रहे हैं, ऐसे लगते हैं कितने आनंदित हैं, ओ कितना बढ़िया है, कितना मजा ले रहा है, देखो कैसी कैसी ऊपर नीचे छलांग लगा रहा है, क्या क्या स्टाइल में नाच रहा है। लेकिन जो नाच रहा है वो जानता है कि मैं आनंद पूर्वक नौकरी पर जा नहीं रहा हूं, मुझे धक्का मार के बीवी भगा रही है। लेकिन दूसरा जाने वाला हमें कितना अच्छा लगा, ओ कितना बढ़िया है यार। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन थोड़ा लेट हुआ और लोकल जो महाराष्ट्र के बच्चे थे उनका जल्दी हो गया, तो मैं सोचता था ये मेरे से भोंदू लड़का और ये यूनिफॉर्म पहन करके इंजीनियरिंग करने जा रहा है, मेरा अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, मेरा जो है राउंड कब आएगा एडमिशन का। तो दूर से मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा हो जाता हुआ और मैं हाथ मल रहा हूँ, मेरे को जाने को नहीं मिल रहा है। और जैसे ही मेरा एडमिशन हो गया मैं इतना दुखी हो गया यार, वो दिन बहुत बढ़िया थे जब जाने को नहीं मिल रहा था। गधा मजूर की तरह अटेंडेंस 75% करनी है तो जाना पड़ेगा। एक बार एक बेचारा, हाँ नौकर जो नौकरी कर रहा था अच्छी खासी, तो घर पे वापस आ गया दोपहर में। अरे आप इतने जल्दी कैसे आ गए? बोले बस ऐसे। नहीं नहीं बताओ क्या हुआ? बोले नहीं कुछ हुआ था। बताओ तुझे क्यों आ गए? बोले बॉस कह रहा गो टू हेल। फिर बोले मैं घर पे आ गया। बोले नरक और है कहाँ बोले घर के अलावा। उसने बोला गो टू हेल, इतना परेशान हो गया था मेरे से, उसने बोला गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर एंड गो टू हेल। तो जो कठपुतली की तरह नाचता है ना, उसको लगता है कि यार मेरे लिए तो वास्तव में बहुत उछल कूद हो रहे, मैं नहीं ऐसे ऊंचा होना चाहता लेकिन कठपुतली बना हुआ। और माया तो क्रूरा है, देवी है शांतनुमयी मम माया दुरित है। कठपुतली तो बनना पड़ेगा भाई, या तो माया की बनो या श्री कृष्ण की बने। अब माया की हम नेचुरली क्यों बने हुए, क्योंकि हम शुद्ध नहीं, जंग लगे हुए लोहे हैं, इसलिए कृष्ण पूरा आकर्षण है ही नहीं। दुनिया भर की काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट अहंकार, अहंकार इतना भरा पड़ा है भूल जाते हैं थोड़े समय के मेहमान हैं, ऐसा लगता है हम ही भगवान हैं हिरण्यकश्यपु की तरह, हमसे बढ़कर कौन, मैं हूं डॉन डॉन डॉन। व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, तो उसके लिए क्या होता है, माया खंबा फाड़ के प्रकट हो जाती है। वो सोचता भी नहीं कि मैं ऐसे फंस जाऊंगा, अचानक से माया प्रकट हो जाती है, धन के रूप में, स्त्री के लिए पुरुष के रूप में, पुरुष के लिए स्त्री के रूप में, कहीं भी रहेगा वो माया प्रकट हो जाएगी। घोर पानी में अगर गुफा में चला जाएगा वहां भी माया प्रकट हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा भक्त बन गया हो, बोले जिसका हृदय शुद्ध हो गया हो, उसके लिए भगवान कहाँ प्रकट नहीं हो सकते, उसको सब चीजें अपने आप ही नेचुरली समझ में आएंगी। सिर्फ क्या करना है, शुद्ध करना है बस उसको। बोले ऐसा शुद्ध होते कैसे हैं, प्रश्न उठता है, ऐसे शुद्ध होते कैसे हैं, ऐसे शुद्ध बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे शुद्ध होने के लिए बस महान भक्तों से, शुद्ध भक्तों से भगवान की कथाओं को सुनना नहीं, श्रवण करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही नारद जी से क्या किया था, श्रवण कर लिया था बस 9 महीने में ही। वहां तो सुनने की ऐसी सुविधा भी नहीं थी कि पंखा चल रहा हो, एसी चल रहा हो, बढ़िया कुर्सी हो, बैठने की सब व्यवस्था हो, कैसी अंधकार की कैसी विकट अवस्था में भी प्रहलाद महाराज ने इतना ध्यान पूर्वक श्रवण करके दिखा दिया। और हमारी कैसी निकृष्ट अवस्था है, इतनी सुविधाएं भी दे दी जाए तो भी कोई ना कोई ऐसा बहाना निकाल लेते हैं। शुरुआत में थोड़ा उत्साह रहता है, नया नया मुल्ला जब रहता है, फिर धीरे 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 ऐसा स्थान का त्याग करता हुआ भागता है वो, क्योंकि जो पहले से श्रवण करके रखा है ना, और यहाँ वो सुन रहा है, तो फिर वो असर कहाँ करेगा इतना जल्दी। पहले तो उस गंदगी को भुलाने के लिए काफी कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी थोड़ा श्रवण करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कभी कर, कुछ नहीं, कोई ज्यादा काम बड़ा नहीं है, और धाम में तो वातावरण ही चारों तरफ ऐसा है कि जीव मात्र आकर्षित है। और अगर धाम में आकर के भी अगर हम नहीं श्रवण कर पाए इन लीला कथाओं को, जिनको के प्रहलाद महाराज ने ना केवल खुद की मति को ऐसा बचपन में ही कर लिया, प्रहलाद महाराज ने बड़े होकर के जो असुर पुत्र जिन्होंने गर्भ में नहीं सुना था उनको उन्होंने कहां सुनाया। हम सोचे हम भी गर्भ में सुनने का मौका मिलता तो, मौका तो दिया था, हमने सुना नहीं। प्रहलाद महाराज ने कहां सुनाया, पहले तो एक ही कीमत ही ऐसी थी, मति सुधारने के लिए वापस भेज दिया प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने, और दोबारा में थोड़े समय के बाद आए दूसरी तीसरी बार में, तो पता चला पूरी क्लास ही ऐसी हो गई। किसके प्रताप से? उन्होंने प्रहलाद महाराज से केवल श्रवण किया था, और उनके सारे मित्र लोग परम वैष्णव बन गए, भगवान के भक्त बन गए। इसलिए भाई भक्त बनने की आवश्यकता है। हम सब लोग अपने जीवन में इस बात को विचार करें कि हम सबकी उम्र बड़ी तेजी से जा रही है, और इस उधेड़ बुन में हम बहुत लगे रहते हैं कि ऐसे भक्त बनेंगे, वैसे भक्त बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अपनी मनगढ़ंत विचारधारा से हमने भक्ति के अलग अलग अंगों को बहुत बलपूर्वक लेते हैं। कोई परिक्रमा खूब लगाना चाहता है, कोई निर्जल एकादशी रखना चाहता है, कोई बहुत सारी सेवाएं करना चाहता है, कोई रात दिन शास्त्रों का अध्ययन में लगा हुआ है, कोई रात दिन भाषणबाजी करने में लगा हुआ है, कोई एकदम संत दर्शन में लगा हुआ है और दर्शन करते ही भागता फिरता है दूसरे संत का दर्शन करना है, कोई अलग अलग धाम में जाकर के अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने में लगा हुआ है, कोई माला फेरने में लगा हुआ है, कुछ भी करते रहो, भक्ति की शुरुआत ही श्रवणम से शुरू होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण के प्रति अगर हम ढीले हैं, ये सबसे बड़ा थर्मामीटर है। प्रभुपाद जी का श्रवण बहुत अच्छा था। भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद जी को दीक्षा को लेकर के जब बात उठी तो भक्ति सिद्धांत महाराज, हाँ मैं इनको दीक्षा जरूर दूंगा, ये मेरी क्लास बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। और भक्ति सिद्धांत महाराज लंबी लंबी क्लास देते थे। हम लोग सोचते हैं अब कितने बार DYS सुनेंगे, हम पक गए बोले सुन सुन करके, लेकिन खोपड़ी में घुसा ऐसा तो मन में अपने भी आता है, अरे यार भागवतम पढ़ लिया और कितने बार पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ते हैं तो भाई कभी घुस जाता है, कभी नहीं घुसता है, मौका है। कभी बुद्धि ठिकाने होती तो घुस जाता है, कभी बुद्धि ठिकाने नहीं होती तो कितना भी करते रहो घुसता ही नहीं। इसलिए ये केवल प्रकारें हम सबको, कोई के अच्छा भाई ऐसा शुद्ध भक्त मिलता नहीं सुनाने के लिए, नहीं मिलता तो शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी तो हैं, उन्होंने जो लिखा है उसको ही पढ़ लो। तुम जब पढ़ोगे तो उन्हीं की बात को तो सुन रहे हो, पढ़ना मतलब उनके वचनों को सुनना, सुनना ही तो है। इसलिए हम अच्छी तरह से जब पढ़ेंगे, अच्छी तरह से अगर इन बातों को कोई समझाने वाला मिले और समझेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। प्रभुपाद जी ने समझाना भी जरूरी समझा, इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर स्टेब्लिश किए, अन्यथा प्रभुपाद जी कहते मंदिर मंदिर मत बनाओ भाई, केवल किताबें ही बांट दो बस। किताबें भी आवश्यक हैं जिससे कोई अपना ही मनगढ़ंत को सुनाने न लग जाए मार्केट में, इसलिए ऐसे मनगढ़ंत सुनाने वालों से बचने के लिए प्रभुपाद जी ने किताबों को बड़ा बलपूर्वक संसार में बांटा। साथ में प्रभुपाद जी ने खुद जा जा करके जगह जगह मंदिर स्टैब्लिश किए, साथ में प्रभुपाद जी ने परंपरा को आगे बढ़ाया, इतना बड़ा मैनेजमेंट स्टैब्लिश किया जिससे चीज़ों को अच्छी तरह से समझाया जा सके। इसलिए इन घटनाओं को स्मरण करने का, इन घटनाओं को याद करने का एक ही मात्र औचित्य है कि भाई एक दिन हमारे साथ भी ये घटनाएं घटित होनी चाहिए। हम कब ऐसे बनेंगे कि हम ऐसे निडर हो जाएं कि हमें समुद्र में फेंकने के लिए कहा जाए फेंक दो, क्या करोगे हमारा, हमें जब हाथी कुचलने के लिए आ जाए बोले कुचलवा दो, हमें जब जहरीले सर्पों की कोठरी में डाल दी जाए तो भी वो सर्प हमारे साथ खेलने लग जाए। ये उपलब्धि है, ये भक्ति है। ये नहीं कि एक और माला चल रहा है, हृदय एकदम वैसा का वैसा ही बना पड़ा है, तो फिर उस माला से हम कैसे अपने जीवन में बच पाएंगे। हम तो अरेंजमेंट में लग जाएंगे, पैसा इकट्ठा करने में लग जाएंगे, लोगों को भगवान के दर्शन खुद पहले घूम घूम के खुद दर्शन कर लेंगे, फिर अपना पैसा खत्म हो जाएगा, फिर सोचेंगे चलो गाइड बन जाते हैं दूसरों को दर्शन कराते जिससे आमदनी चालू हो जाए। इसलिए ऐसी दुर्बुद्धि की अवस्था से बच नहीं सकते। हम संसार के कठपुतली वाले लोगों की ओर आकर्षित ना हो, माया बड़ी क्रूर है, कृष्ण बड़े दयालु हैं। कृष्ण कठपुतली की तरह नचाते हैं, लेकिन उसमें भक्त की इच्छा ही महत्वपूर्ण होती है, और माया नचाती है उसमें माया की इच्छा महत्वपूर्ण होती है। माया दंडित करती है नचाने के माध्यम से, और दूसरों को ऐसा लगता है वाह कितना बढ़िया आनंद आ रहा है। भगवान की लीला है ना, भगवान दंडित भी करते हैं तो उनका दंड भी बड़ा मधुर होता है दूसरों के लिए। तो कालिया नाच की जान जा रही है, दूसरों को ऐसा लग रहा है वाह कृष्ण कितना सुंदर नाच रहे हैं। इसलिए कृष्ण का तो सब कुछ मधुर है, उनकी माया भी ऐसे ही श्रेष्ठ है। इसलिए हम सभी भक्तों को हिरण्यकश्यपु का साधु सदृश पुत्र, 5 साल का बालक कैसी साधुता के लक्षणों से भरा पड़ा है। माता पिता का भी यही लक्षण होना चाहिए, ये नहीं रोटी खाना है पेट भरना। अरे सुअर भी, मैं ट्रेन से आ रहा था, बहुत गहरी कीचड़ में उसने आधा खोपड़ी अपना घुसा दिया उसमें, आधे तक तो उसका लेयर बना हुआ था कि मतलब जब खा रहा था मैंने देखा पूरा आधा लेयर तक उसका, जैसे नदी का निशान बढ़ जाता है ना ऐसे, वहां तक मैंने पूरा काला काला यहाँ तक उसका कीचड़ का निशान पड़ा हुआ है। और फिर मैं देखा कीचड़ में घुसा करके और हबड़ हबड़ कर रहा है वो, मैं समझ गया कि कैसी भगवान ने क्षमता दी है इसको, इसमें से भी अपना भोजन निकाल लेता है। भोजन पाना इतना सहज थोड़ी है, संघर्ष है संसार में। तो जो सुअर को संघर्ष करना पड़ रहा है तो क्या हम मनुष्यों के लिए कम संघर्ष है क्या? संघर्ष तो है ही, हम हबड़ हबड़ करके कैसे भी करके अलग अलग लाइन खींचते रहते हैं अपने चेहरे पर, हम यहाँ तक घुस गए संसार में, अब यहाँ तक घुस गए, और घुस घुस करके पेटी तो पाल रहे हैं बस, और कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बात न माँ के अंदर घुसती है न बाप के अंदर घुसती है, औलाद के अंदर तो घुसती नहीं। औलाद माँ बाप की इस मामले में बड़ी आज्ञाकारी बन जाती है, बाकी मामलों में माँ बाप को चलाती है औलाद। इसलिए हम सब अकेले आए हैं और इस संसार से अकेले ही जाएंगे। ये जीवन में हम श्रवण से लौ लगाएं, कथा को श्रवण करना सीखें। जब तक ये नहीं होगा कई जन्म बीत जाएंगे, और ये अगर किसी का हो गया, सबका नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सबका नहीं होगा, किसी न किसी का तो अवश्य होता ही है और उसका उतार होता है। तो ये जो महाप्रभु का आंदोलन है, जिसमें महाप्रभु ने स्वयं ऐसी परंपरा जो प्रेम से ओत प्रोत करके दिया है, इस आकर्षण से ओत प्रोत करके इस परंपरा को दिया है, जिसमें महाप्रभु ने सबके लिए प्रेम के जो बांध था, जिसमें शिव ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ बांध था, वो भी भगवान ने सबके लिए खोल दिया। हम सब ऐसे कब बन पाएंगे, ऐसा विचार से हम सबको समर्पित होकर के आज्ञाकारी होते हुए, जैसे प्रहलाद महाराज अपने गुरु नारद जी के प्रति आज्ञाकारी हैं, समर्पित हैं, तो उनके जीवन में आप खोल सकते, उनके जीवन में हम भी ऐसा आकर्षण महसूस अवश्य कर सकते हैं। लेकिन हमारी खींचातानी होती है, बीच में लटके हुए लोग हैं, थोड़े माया की ओर आकर्षित हो जाते हैं, थोड़े कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जब कथा सुनते हैं तो इधर आकर्षित हो जाते हैं, मोबाइल देखते तो उधर आकर्षित हो जाते हैं, न घर के प्रहलाद महाराज की जय।